जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधाश्याम सुंदर राधाश्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के पांचवें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 5 श्लोक 25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र अदृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै प्रभु स्तुतिम् अब्रूत दैवीभिः गिरिभिः तु अवहितेन्द्रियः। तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै प्रभु स्तुतिमब्रुत दैवीभिः गिरिभिस्त्ववहितेन्द्रियः। तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै प्रभु स्तुतिमब्रुत दैवीभिः गिरिभिस्त्ववहितेन्द्रियः। तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै प्रभु स्तुतिमब्रुत दैवीभिः गिरिभिस्त्ववहितेन्द्रियः। माता जी माता जी तत्र वहां श्वेत दीप में अदृष्ट स्वरूपाय श्री भगवान की जिन्हें ब्रह्मा तक ने नहीं देखा था, श्रुत पूर्वाय, किंतु जो वेदों में सुने गए थे, जो वेदों से सुने गए थे, वही निसंदेह प्रभु ब्रह्मा जी स्तुति वैदिक साहित्य से प्राप्त स्तुति अब्रूत की गई दैवी भी स्तुतियों द्वारा या वैदिक सिद्धांतों को पालने वाले व्यक्तियों द्वारा गिर भी ऐसे गीतों या उच्चारणों द्वारा तो तब अवहित इंद्रिय स्थिर चित्त। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, वहां श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने वैदिक साहित्य से श्री भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतएव उन्होंने स्थिर चित्त होकर श्री भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई यह मान्य है। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वे उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर श्री भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा। श्रुत पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। श्रुत पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद है। यह आवश्यक नहीं है कि ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन कर सके। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है, अतएव ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। यद्यपि धूर्तों तथा मूर्खों ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ सके कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकता। अतएव हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने श्री भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे। इस तरह उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, वे वहां गए और उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कपोल कल्पित स्तुतियां नहीं है। स्तुतियों का वेद सम्मत होना चाहिए। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि श्लोक में आगत दैवी भीर गिरवी शब्दों से सूचित है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत न हो या प्रमाणिक भक्तों द्वारा न प्रमाणित भक्तों द्वारा गाया न गया हो। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाने जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम प्राय दो गीत गाते हैं, एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद, यह प्रामाणिक गीत है। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में सदा होता है और आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा गीत है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर तथा लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं, लेकिन उपयुक्त दोनों गीत श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। भले ही हम उनका दर्शन न कर सके, श्री भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना के प्रामाणिक साहित्य अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्यों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोग इधर उधर भी हो तो उसको सजा करके ग्रहण कर लीजिएगा। हम लोग मन्वंतर के विषय में श्रवण कर रहे हैं। चौदह मन्वंतर हैं, होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। मन्वंतर श्रीमद् भागवतम का एक मुख्य विषय में से है। मन्वंतर की कथा के क्रम में छठे मन्वंतर की चर्चा की है। पहले मैं मन्वंतर के अंगों का चर्चा कर चुका हूं। प्राय प्राय कोई भी मन्वंतर है तो उसमें भगवान अवतार लेते हैं, मन्वंतरावतार कहा जाता है। चाक्षुष मन्वंतर की बात चल रही थी, भगवान अजीत के अवतार की बात आ गई। संभूति के गर्भ से भगवान अजीत जन्म लिए और वे समुद्र मंथन किए। अब इस बात को सुन करके महाराज परीक्षित समुद्र मंथन के विषय में प्रश्न करने लगे, किस कारण से समुद्र मंथन किया गया, भगवान कैसे कूर्म रूप से सुमेरु पर्वत को उठाए, और भी क्या क्या रत्न निकला समुद्र में, और सब घटना विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की। तब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं, इस समुद्र मंथन की आवश्यकता क्या पड़ गई। इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, आवाज ठीक करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब सुनाई दे रही है, आए? क्या आवाज ज्यादा हो गया? आवाज कम है, आवाज ठीक है, आवाज ज्यादा है, चलिए ठीक है, तीनों है तो कोई नहीं। परीक्षित महाराज समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। देवता और दैत्य में झगड़ा चलता रहता है। एक बार दैत्य लोग देवताओं की खूब पिटाई किए, सीता ही आयुध है एकदम तीक्ष्ण हथियार से हम बहुत पिटाई किए, इतना पीटे कि देवताओं को खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। तो देवता हैं और इस दुर्दशा को प्राप्त हुए, ऐसा कैसे होगा? इसके पीछे का कारण बतला रहे हैं कि एक बार इंद्र से गलती हो गई, दुर्वासा जी का अपराध कर दिया। दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने गए थे, भगवान का दर्शन किए और भगवान के पार्षद लोग उनका सम्मान किए। दुर्वासा जी भगवान के भक्त हैं, हम लोगों के मन में बसा हुआ है दुर्वासा जी बड़ा क्रोधी है, अटपटा व्यक्ति के रूप में मन में धारणा बना लिए है। लेकिन दुर्वासा जी भगवान के अतिशय प्रेमी भक्त है, ब्रज में रह करके भजन करते हैं और गोपियों के भी गुरु हैं। भगवान के धाम में गए, उनका दर्शन किए, भगवान के परिकर उनका सम्मान किए, भगवान का प्रसाद माला उनको दिए, वे आनंद से आ रहे थे। तब तक रास्ते में इंद्र दिखाई दिए, वो ऐरावत पर चढ़ करके आ रहे थे। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, जो व्यवहारिक व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, उसके वे हेड हैं। आज भी यह व्यवस्था दी जाती है कि जो किसी पद पर है उसके महिमा के लिए पद भी काउंट करता है, सीनियरिटी निर्धारित करना होता है, उसके पद का भी ध्यान रखा जाता है। वो इंद्र को देख करके दुर्वासा जी उनको प्रसाद माला दे दिए, इंद्र का सम्मान करने के लिए अपने गले का माला इंद्र को दे दिए, चूंकि भगवान का प्रसाद था। अब इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं, उनके मन में यह विचार आने लगा कि मैं यह बासी माला पहनूंगा, तो खुद न उस माला को पहन करके हाथी के मस्तक पर फेंक दिए। हाथी पर चढ़े तो हाथी कुंभ पर फेंक दिए, मस्तक पर फेंक दिए। हाथी का स्वभाव है कि कुछ भी उसके नजदीक आता है सूंड से पकड़ते हैं, यदि पैसा आ गया तो पिलवान को दे देते हैं खाने का कोई चीज आया तो मुंह में, और दूसरा चीज है तो पैर के नीचे। ऐरावत पकड़ा माला को और पैर के नीचे कुचल दिया। अब इसको देख करके दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि भगवान के माला का अपमान कर रहा है, प्रसाद का अपमान कर रहा है, और उनको साप देने में देर नहीं लगती है तुरंत कह दिए निःसृष्को भव, तुम्हारा स्त्री समाप्त हो जाए, ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। और दुर्वासा जी का साप का प्रभाव आ गया, और इंद्र तो स्त्रीहीन हो ही गए, सारे देवता स्त्रीहीन हो गए और सारा संसार स्त्रीहीन हो गया। देवता लोग आपस में मीटिंग करने लगे कि अब हम लोग क्या करें। देवताओं की यह दुर्दशा हो गई कि उनके भोजन पर हड़ताल हो गया, कोई यज्ञ ही नहीं कर रहा था। वो यज्ञ से समृद्धि आती है, समृद्धि होती है, यज्ञ करते हैं लोग, अब समृद्धि खत्म हो गई, यज्ञ कोई नहीं कर रहा था। या एक अर्थ किया गया है कि देवता लोग प्रयास किए, वे दुर्वासा जी के साप को हम लोग यज्ञ इत्यादि करके और रेक्टिफाई कर दे, उसका मार्जन कर दे, उसको समाप्त कर दे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और वापस में आपस में कई एक बार विचार करने लगे कि अब हम लोग क्या करें। जो देवताओं के लीडर हैं इंद्र वरुण कुबेर, वे लोग मीटिंग कर रहे थे, सिक्योरिटी कमिटी की मीटिंग होने लगी, लेकिन वे लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर हैं, वहीं उनका लीगल हाल है, वहां मीटिंग चलता रहता है। ब्रह्मा जी से अपनी बात को देवता लोग रखे, ब्रह्मा जी भी देखे कि देवताओं की यह दुर्दशा हो गई है, इनका तेज पूरा पूरा समाप्त हो गया है, उनको कुछ दया आ गई और वे विचार करने लगे। विचार करने लगे और विचार करके और देवताओं को कहे कि हम लोग भगवान के शरण में चलते हैं। और सारे देवता मिल करके ब्रह्मा जी के साथ श्वेत द्वीप के नजदीक गए और वहां जा करके वे लोग प्रणाम करने लगे। तो कह रहे हैं इत्याभास सुरान वेदा सहदेवै अरिंदम अजितस्य पदम साक्षात जगाम तमसः परम। भगवान का धाम जहां भी रहता है तो माया के प्रभाव से दूर रहता है, वहां प्रकृति के गुण का कोई प्रभाव नहीं है। तो भगवान के धाम के नजदीक गए, धाम में ही गए, धाम के नजदीक गए। अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि तत्र वही श्वेत द्वीप के नजदीक जा करके अदृष्ट स्वरूपाय, भगवान का दर्शन उनको नहीं है लेकिन श्रुत पूर्वाय, पहले से भगवान के विषय में बहुत बहुत सुन चुके। प्रभु ब्रह्मा जी स्तुति मब्रुवत, स्तुति बोलने लगे, दैवी भी गिर भी, वैदिक वाणी से, दैवी वचन से, अवहितेंद्रिय इंद्रिय को समाहित करके और प्रार्थना बोलने लगे, स्तुति करने लगे। और श्लोक के कई एक शब्द हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु ब्रह्मा जी समर्थ हैं, कई एक दृष्टि से सक्षम व्यक्ति हैं और देवता लोग भी साथ हैं, ब्रह्मा जी का स्वर प्रधान है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति प्रारंभ कर दिए, लेकिन कह रहे हैं कि अदृष्ट स्वरूपाय, भगवान की स्तुति कर रहे हैं लेकिन भगवान का कभी दर्शन नहीं किए, दर्शन पहले से नहीं किए, स्तुति बोलने लगे। वे दर्शन नहीं किए, भगवान का ज्ञान कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि श्रुत पूर्वाय, पहले से सुन चुके और सुने हैं, देखे नहीं है। कभी कभी कोई भक्ति में लगता है और नास्तिक लोग प्रश्न करने लगते हैं, भगवान को देखे हैं, भजन कर रहे हैं और देखे नहीं है, तो इससे क्या हुआ? भगवान के विषय में सुने हैं ना। देखिए भगवान का ज्ञान सुनने से होता है, हो सकता है कि देखने से ज्ञान न हो। कई एक लोग हैं कि भगवान को एकदम प्रत्यक्ष देखते हैं लेकिन उनको कोई भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता। आप लोग नाम सुने हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हुआ, राजा हुआ, सम्राट हुआ, उसका नाम था जरासंध, बहुत शक्तिशाली था। जरासंध है मगध का राजा था, और महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते थे, राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। तो वह प्रस्ताव भगवान से रखे और भगवान उसका समर्थन किए, और जरासंध पर विजय प्राप्त करना था। उसके लिए अब उद्धव जी सलाह दिए थे भगवान को कि मल्ल युद्ध में उसको पराजित करना चाहिए, भीम उसको पराजित कर सकते हैं। और भगवान भीम को लेकर के और जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था, ब्राह्मणों को दान देता था और रोज का नियम था। तो भगवान दान बेला में गए और ब्राह्मण का भेष बना करके गए, अर्जुन भीम और कृष्ण तीनों ब्राह्मण के भेष में गए। और दान बेला में गए और सत्कार किया जरासंध और कहा कि किस उद्देश्य से आप लोग आए, क्या हम आपको दान दें। भगवान कहे कि हम लोग दान देने के लिए आए हैं, दान लेने के लिए आए हैं, लेकिन नान कांक्षिड़ा, हम लोग अन्न लेने के लिए नहीं आए हैं। हमको दान देना है तो युद्ध दान दो, हम लोग युद्ध करने के लिए। और जरासंध है तो इतना तो समझ गया कि तुम लोग ब्राह्मण तो नहीं हो, भगवान भी परिचय दिए कि हाँ हम लोग ब्राह्मण नहीं है, ये अर्जुन है, ये भीम है, मैं कृष्ण हूं। अगर तुम लोग युद्ध के लिए आए हो, तुम अरे भगोड़ा, तुमको शर्म नहीं लगता है, तुम्हारे साथ हम युद्ध करेंगे, तुम्हारा औकात है कि हमसे युद्ध। और अर्जुन ये नाच गान करने वाला, मृदंग बजाने वाला, ये क्या कुश्ती करेगा, इसका शरीर कोमल है, ये लवंडा के साथ हम युद्ध करेंगे। ठीक है, युद्ध करना है तो भीम के साथ कर लेंगे। देखिए प्रत्यक्ष कृष्ण वहां है ना, लेकिन कृष्ण को नहीं पहचान पाए। कह रहे गुप्ता भाग गया। गुप्ता का बहुत अर्थ किया गया है। हे बनिया कमाना जानते, लड़ाई जानते। ये गुप्ता का अर्थ कि तुम तो जा करके छिप गया भर समुद्र में और अब आए हो लड़ाई करने के लिए। गुप्ता का एक अर्थ है कि तुम तो भक्तों के बीच में छिपे रहते हो। अब सरस्वती जी अर्थ किया, जो हम केवल इतना कह रहे हैं कि देखने से, केवल देखने से भगवान का ज्ञान नहीं होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि देखने से भगवान का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा मत कंफ्यूज कीजिए कि महाराज कह रहे थे कि देखने से भगवान का ज्ञान नहीं। भगवान के ज्ञान प्राप्त करने में सबसे बड़ा साधन है देखना और सुनना, इसलिए जरूर दर्शन करना चाहिए। भगवान के श्रुतिक्षित पथ, भगवान हृदय में जाते हैं दो ही रास्ता से, श्रुत और इच्छित। भगवान को हृदय में लाने का सबसे श्रुतिक्षित पथ श्रुत और इच्छित, देखना और सुनना, यही मार्ग है। या एक अर्थ किया जाता है श्रुतिक्षित पथ, भगवान का देखा हुआ मार्ग सुनना है। कभी कभी कहीं जाने के लिए दो रास्ता होता है, और इस रास्ता को हम देखे हैं, ड्राइवर लोग इससे हम गए हैं, देखा हुआ, इसी से चलते हैं। तो हृदय में आने का, भगवान का देखा हुआ मार्ग
श्रुत है, सुनना।
और कैसे धुनोति समलम कृष्ण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान कान के रास्ते से हृदय में आ जाते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि केवल देखने से कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो जाएगा, सुनने से ज्ञान हो जाता है। और कह रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वाय, वे अदृष्ट स्वरूपाय, वे भगवान को देखे नहीं थे लेकिन श्रुत पूर्वाय, पहले से सुने थे, बहुत सुने थे। वे भगवान की स्तुति करने लगे, स्तुति कर रहे हैं दैवी भी गिर भी, दैवी वाणी से स्तुति कर रहे हैं। दैवी वाणी का मतलब है कि जो दिव्य है, गुणातीत है, या दैवी वाणी का अर्थ है कि जो देवतुल्य लोगों की वाणी है, जो संसारिक है उनकी वाणी नहीं, जो संसार से ऊपर के हैं, दैवी प्रकृति में स्थित हैं, भक्त हैं, और उनके वाणी से, उनके रचना से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भगवान की स्तुति करनी है तो स्तुति का सिलेक्शन करने में ध्यान रखना होता है। जो आचार्य के अनुगत्य में स्तुति की गई है, जो आचार्यों द्वारा अनुमोदित है, तो उसी स्तुति से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दो स्तुति सफिशियंट है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। एक स्तुति हुआ, दूसरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दो सरल स्तुति है, सर्वमान्य, इसमें कोई संशय नहीं। इसके साथ और भी वैष्णव सॉन्ग है, खास करके नरोत्तम दास ठाकुर का, भक्ति विनोद जी का, लोचन दास ठाकुर का, और भक्तों का, जिसे स्तुति करना चाहिए। और कह रहे हैं कि श्रुत पूर्वाय, पहले से सुने थे। वास्तव में सुनने से भगवान का ज्ञान होता है, और भगवान का ज्ञान होता है और उनके दर्शन की उत्कंठा हृदय में जगती है, और जब तीव्र उत्कंठा जगती है तभी भगवान का दर्शन होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन के बाद आप उनके भक्ति प्रारंभ करेंगे, भक्ति करने से भगवान का दर्शन होता है। जब तक कोई दूसरी वासना है मन में तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। वासना समाप्त होता है उत्कंठा बढ़ने से। जब भगवान का अनुभव करने लगते हैं तो हमारी वासना समाप्त हो जाती है। वो वासना को समाप्त करने के लिए सुनने का बहुत महत्व है, सुनने से उत्कंठा जगती। देखिए, हम जो साधन भक्ति करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है चित्त का निर्माण करना, चित्त को सॉफ्ट करना, इसको मशीन करना। साधना से चित्त का निर्माण होता है, और व्यक्ति ऐसे लोगों से श्रवण करे जो भगवान का अनुभव किए हैं, जिनके चित्त में भगवान का अनुभव है, और उनके वाणी को सुनते हैं, तो हमारे चित्त पर सीधा उसका असर हो जाता है। और सुनने से हमारा चित्त बिल्कुल पिघल जाता है। देखिए, इस विषय में बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन समय के अभाव में हम एक घटना का उल्लेख करेंगे। भगवान ब्रज से मथुरा में गए, अक्रूर जी लेकर के गए थे, लेकिन अक्रूर जी को भगवान कहे कि आप रथ लेकर के जाइए, हम अभी नहीं जाएंगे। अक्रूर जी बहुत प्रार्थना किए कि साथ चलिए, कहें कि ना। हम साथ में अभी नहीं जाएंगे। वे कहे कि हमारे घर चले, हम उनके बाद में आएंगे। तो भगवान बाहर रुके और इसके बाद फ्रेश हुए। उसी दिन संध्या को या दूसरे दिन नगर में प्रवेश किए और जे वहीं यह पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किए हैं, मथुरा में आ रहे हैं। भगवान बहुत धीरे धीरे जा रहे थे नगर का दर्शन करते हुए। जे वहीं मथुरा के स्त्रियों को पता चला कि कृष्ण बलराम आए हैं तो त्वरिता समेयु, और वे बड़ी तेजी से अब कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए चली। और हरमाइड़िया चारुरुहु, बहुत सारी स्त्रियां तो छत पर चढ़ गई कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए। उनका वर्णन किया गया है कि इतनी दर्शन की लालसा थी कि सब अपना काम धंधा छोड़ दिए, जो भोजन कर रही थी भोजन का त्याग कर दी, कोई कपड़ा पहन रहे थे जितना पहनी थी उतना ही पहन करके कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए छत पर चढ़ गई। एक कपड़ा पहनी है तो दूसरा कपड़ा पहनने की अपेक्षा नहीं रखी, एक गहना पहनी है उसको तो दूसरा भी पूरा करने की अपेक्षा नहीं रखी, श्रृंगार कर रही एक आंख में काजल लगाई है तो दूसरे आंख में काजल लगाने की अपेक्षा नहीं की, एकदम छत पर चढ़ करके और देखने के लिए ललायित हो गई, देखने लगी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मनान सीतासम अरविंद लोचन, भगवान उनके मन का हरण कर लिए। दुरेंद्र विक्रम, भगवान चल रहे थे अभी दूर थे, भगवान के श्री विग्रह को देखते ही अब उन स्त्रियों का मन उनके हाथ से निकल गया। श्री रमणा ददत उत्सवम, भगवान का जो श्री विग्रह है तो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थान है, तो अभी तो वे दूर थे तभी वे देख रही हैं, अब थोड़ा नजदीक कृष्ण आए तो दुरेंद्र विक्रम उनका जो चाल है उससे उनका मन खींच गया। और कृष्ण के दृष्टि पड़ने पर तो एकदम विशुद्ध हो गई। अब उनका वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी के दृष्ट्वा मोहश्रुत मनोदृत चेतसस्तम, ये इतना उनका मन कृष्ण के तरफ धावित हो रहा है, इतना तन्मय हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि दृष्ट्वा मोहश्रुत, वे बार बार कृष्ण के विषय में सुनी थी। दृष्ट्वा मोहश्रुत मनोदृत चेतसस्तम, उनका चित एकदम पिघल गया था, सॉफ्ट हो गया था, कृष्ण के तरफ बह रहा है और इसके पीछे कारण मोहश्रुतम, वे बार बार सुनी। अरे कहां से सुनी? वे कोई सेमिनार अटेंड की थी ना, वे तो घर में रहने वाली स्त्रियां हैं, लेकिन वृंदावन से चूड़ी बेचने वाली, डाड़ा बेचने वाली या ये इत्र बेचने वाली स्त्रियां जाती थी, अब वे चूड़ी पहना रही है, वे तो वृंदावन से गई हैं, गांव से गई हैं, ब्रज से गई हैं, तो वे कृष्ण बलराम के सौंदर्य को देखी हैं, गोपियों के साथ क्या व्यवहार है तो प्रत्यक्ष दर्शन की है, तो वे रियलाइज्ड सोल हैं, कृष्ण को वे समझ रही हैं। और उसी क्रम में वे कृष्ण की बात करने लगती थी, स्त्रियां तो चुप रहते ही नहीं है, कुछ न कुछ बात करने ही लगती हैं, और जो उनके चित्त में है वे बात करती हैं। तो वृंदावन से जो डांडा बेचने वाले, डांडा आप लोग समझ रहे होंगे ना, अब तो प्रचलन खत्म हो रहा है, या वो इत्र बेचने वाले, चूड़ी पहनाने वाले, तो चूड़ी पहनाने में वो समय लगता है, उसी में सुनती थी, लेकिन मोहश्रुतम वे बार बार सुनी थी, तो उनका चित्त अनुद्रुत एकदम पिघल गया था, कृष्ण के तरफ चला गया। और वे एक बार कृष्ण को देखे तो दृग भी अपने दृष्टि से उनको अंतर ले गई और परिरभ्य उनका आलिंगन करके दीर्घ काल के ताप को समाप्त कर दी। भगवान आनंद मूर्ति हैं तो अपने दृष्टि से उनको अपने हृदय में ले गए और बहुत गाढ़ आलिंगन की और उनका सब ताप समाप्त हो गया। और जो भी कृष्ण का आलिंगन कर रही है, साक्षात्कार कर रहे हैं, उनका आस्वादन कर रही है, और उसके पीछे मूल सिद्धांत मुहुर्तम अनुद्रुत चेतस, वे बार बार सुनी है इसलिए उनका चित्त बिल्कुल पिघल गया, बिल्कुल मशीन हो गया, और कृष्ण को देखते ही उसमें एकदम संलग्न हो गया। वो चित्त निर्माण होता है सुनने से, और तब भगवान का दर्शन होता है और हम आस्वादन कर पाते हैं। कभी कभी लोग बहुत त्वरा में रहते हैं कि कब हमको भगवान का दर्शन मिलेगा। देखिए, जब भक्ति का रस पुष्ट होता है तब उसका आस्वाद आप ले पाते हैं। फल तैयार होने में समय लगता है। देखते हैं ना, कई एक फल है वो कई एक महीना तक अब धीरे 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 बढ़ता रहता है, तब उसका रस पुष्ट होता है। और भक्ति बहुत दिन तक करते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, तो उत्कंठा जितना अधिक बढ़ेगी और उतना अधिक कृष्ण का आस्वादन कर पाएंगे। और सुनने का बहुत महत्व है। नारद जी ऋषियों से श्रवण किए, जाकर के ध्यान करने लगे। अब ध्यान पर बैठे एकांत जगह में तो भगवान उनके हृदय में आ गए और भगवान का दर्शन किए हृदय में, उनको बड़ा आनंद हुआ। लेकिन भगवान हृदय से उझल हो गए, बड़ा विकल हो गए, बहुत परेशान होने लगे। भगवान के दर्शन का सुख मिल रहा था और उससे अब वंचित हो गया, बड़े विकल हो गए। भगवान उनको आकाशवाणी में बोले कि सकृद यद दर्शितम रूपम एतत् कामाय तेनक। अरे एक बार इस रूप को दिखा दिया इसकी कामना के लिए, अविपक्व कषायण दुर्दर्शो हम ये योगिना। भगवान कह रहे हैं कि जिनका अभी कषाय पका नहीं है तो उसके लिए मैं दुर्दर्श हूं। कषाय का अर्थ है वासना, जो विषय भोग की लालसा है। थोड़ी भी लालसा है तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। कषाय समझिए कि जैसे धातु का बर्तन है, वो कांसे का या और किसी धातु का बर्तन है, एकदम धो मांज करके रख दीजिए, लेकिन बरसात के दिन में कुछ धब्बा आ जाता है। अनुभव है आप लोगों को ना कुछ स्पॉट दिखाई देने लगता है, और उसी को कसाय कहेंगे। तो चित्त पर थोड़ा भी अभी विषय का धब्बा है, थोड़ी भी लालसा है, तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब कषाय पक जाना चाहिए, विपक्व कषाय आना। अब कषाय समाप्त हो गया तो अब भगवान के तरफ मन जाएगा। एक कषाय पक जाने का क्या मतलब है, एक उदाहरण से समझिए। जैसे बेल का फल है, सिरफल देखे होंगे ना, तो डाढ़ से लगा हुआ है। अब उसको तोड़ना चाहे तो बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं तोड़ पाते, तोड़ेंगे भी तो कुछ डाली के साथ तोड़ेंगे। लेकिन वो बेल जब पक गया, पूरा पूरा पक गया, तब तो वह थोड़ा सा टच होने पर भी गिर जाता है। और पका हुआ फल है और कच्चा फल में अंतर देख रहे हैं ना, तो उसी तरह कसाय जब पक जाता है तो अब उसका कुछ संस्कार चित्त पर नहीं रहेगा। ऐसे बेल तोड़िए तो डाढ़ी का कुछ न कुछ हिस्सा उसमें लगा रहता है, और जोर मारते फिर भी कुछ न कुछ लगा रहता है। और पूरा पूरा पक गया तो डाल का कुछ भी हिस्सा नहीं रहेगा। आप लोग अंतर देखे होंगे ना, तो वैसे चित्त का कसाय पूरा पूरा दूर हो जाना चाहिए, और वह दूर होता है उत्कंठा से। मत काम सनकै राजन सर्वान मुंचत हृच्छया। जब भगवान की कामना जग जाती है तो हमारे हृदय में जो भी वासना है वो पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। वो उत्कंठा जगती है श्रवण करने से। तो यह ब्रह्मा जी के स्तुति के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अदृष्ट स्वरूपाय, भगवान का दर्शन तो नहीं किए हैं लेकिन श्रुत पूर्वाय, वो पहले से सुने हैं, तो भगवान की स्तुति करने प्रारंभ किए। स्तुति में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं बोले हैं, उसको आप लोग क्रम से सुनते रहिएगा। या इतना ही कह रहे हैं कि स्तुति बोलना प्रारंभ किए। बहुत ही सुंदर श्लोक था, बाद में तो श्लोक पर थोड़ा मन केंद्रित भी हो गया, लेकिन अब उसके पहले हमको बहुत कठिनाई लग रही थी। उसका कारण है कि इससे मंदिर के एक अतिशय वरिष्ठ भक्त, जो पुराने भक्त होंगे वो जानते होंगे, ब्रजेंद्र कुमार जोगेश्वर जी के साथ उनका बहुत अच्छा साथ संबंध था, बैठते पहले आश्रम में रहते थे, अभी केशव कुंज में, आज उनकी जीवन यात्रा पूरी हो गई है। तो हमारा मन तो उधर ही था, लेकिन क्लास का अनाउंस हो गया था तो जैसे तैसे मैं क्लास को पूरा किया, फिर उधर ही जाना है। हरे कृष्ण।